धारण कर लिए, नहीं, उनका जो स्वरूप था वही भगवान का स्वरूप है। पार्षद भी वैकुंठ में भगवान के समान रहते हैं चतुर्भुज, तो उसी को कह रहे हैं पीतवासा चतुर्भुज। वासा का अर्थ वस्त्र, भगवान के समान पीताम्बर पहने थे, पहने अपने आप, यह भगवान की व्यवस्था है, कहीं से नया कपड़ा खरीद करके नहीं लाना पड़े, स्वरूप में है पीताम्बर और चतुर्भुज, चार भुजाएं। तुरंत ये स्वरूप है जीव का, तो जब तक कर्म बंधन है, अविद्या है, तब तक स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है। भगवान के स्पर्श करने से पार्षद हो गए, और पार्षद हो गए तो हाथी का मरा हुआ शरीर वहां नहीं था, भगवान के छूने से गजेंद्र ही चतुर्भुज हो गए। यह एक अद्भुत कृपा है भगवान की। यदि गजेंद्र मर गए होते और सरोवर के तट पर लोग देखते कि शव पड़ा हुआ है तो यही हल्ला करते, तो भगवान रक्षा क्या किया, आखिर मर ही गया तो रक्षा क्या किया। इसलिए भगवान ने बहुत दूर की बात सोच ली है, इसको वास्तव में मुक्त करना है। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही गए वैकुंठ में, उनका शरीर छूटा नहीं, वह शरीर ही चिन्मय हो गया। उनके सामने मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ा था कि ठीक है आप जाइए वैकुंठ में, मना नहीं करता हूं, लेकिन हमको भगवान ने इस जगत का शासक बनाया है, इसलिए हमारी बात आप मानिए और ये शरीर छोड़कर जाइए। तो विमान थोड़ा ऊंचा था, ध्रुव महाराज ऐसे एक पत्थर पर खड़े थे, कहते हैं ठीक है खड़े रहो, तो वो नीचे खड़ा था तो उसका सिर सीढ़ी का काम कर रहा था, तो ध्रुव महाराज एक पर उसके सिर पर रखे और विमान पर चढ़ गए। काल के सिर पर पैर रखा ध्रुव महाराज ने, भागवत में बार बार यह बात आई, मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरोह हरे पदम, मृत्यु के सिर पर पैर रख कर चढ़ गए। ये है शान भगवत भक्त की, भगवान जिसके फेवर में है वो काल क्या कर सकता है, जो काल स्वयं ही भगवत स्वरूप है, लेकिन ध्रुव महाराज के सामने कुछ नहीं कर सकता, हाथ जुड़ कर खड़ा था, ठीक आप जाइए वैकुंठ लेकिन यहाँ का नियम पालन कीजिए, मतलब देहम त्यक्त्वा जाइए। ध्रुव महाराज देह त्यागने वाले नहीं, तो उनका देह ही पार्षद हो गया। आज तक कितने लोग मरे होंगे लेकिन जमराज जी सबको ले जाकर नरक में पचाए चाहे स्वर्ग में भेजे, लेकिन कोई मृत्यु के सिर पर पैर दे दे, ऐसा तो ये कहीं इतिहास है। प्रकट ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर दे दिए। वैसे जितने भी भक्त हैं भगवान के धाम में जाते हैं तो मृत्यु को जीत करके ही जाते हैं, अब उन्हें मृत्यु अपने अधीन नहीं कर पाता, बाद में उनकी मृत्यु नहीं होती। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। हे अर्जुन, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, पुनर्जन्म में नहीं आता है, मेरे पास आ जाता है। भगवान के पास जाने के बाद वहां मृत्यु नहीं है, उसको नहीं लौटना पड़ता। तो अब जितने भी भक्त हैं भगवान के धाम में जाते हैं तो वे भी मृत्यु को जीतते हैं, लेकिन ऐसे लगा प्रकट दिखा देना मृत्यु के कपार पर लात मार करके और चला जाना, ये अद्भुत है। ध्रुव महाराज किसान है, उनको वीर भक्त कहा जाता है, घर छोड़े अमर्ष में भगवान को पा गए, ललकापुरी में चढ़ाई किए, जक्षों को मारे और मुक्त भी हुए उसी शान के साथ। तो गजेंद्र भगवान का स्पर्श पाकर के चतुर्भुज रूप प्राप्त किए, पीताम्बर पहने थे, अज्ञान से मुक्त हो गए। उसे ये कौन थे जिज्ञासा हो रही है, तब गजेंद्र के पूर्व जन्म की बात कह रहे हैं। सवई पूर्व मभुद राजा पांड्यो द्रविण सत्तम इंद्र दुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। ग्राह के लिए असव शब्द पर जो कर रहे हैं यह, और गजेंद्र के लिए वह, बहुत दूरी की बात बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी का ध्यान तत्काल चला गया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, जब ये गजेंद्र जी इंद्रदुम्न महाराज थे, वो ध्यान आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं स हवाई। तो ये गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविण सत्तम पांड्य अभूत। द्रविण एक देश विशेष है दक्षिण में, तो द्रविणों में सबसे श्रेष्ठ थे, द्रविण देश के राजा थे, पांड्य देश के राजा थे द्रविण। इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण, इनका नाम था इंद्रदुम्न। इतना महान तेजस्वी थे महाराज इंद्रदुम्न कि उनका नाम ही रखा गया था इंद्र के समान तेजस्वी। द्यु का अर्थ होता है प्रकाश और दुम्न का अर्थ होता है प्रकाशमान। प्रद्युम्न प्रकर्षण जो प्रकाशमान है उसको प्रद्युम्न कहते हैं। तो महाराज की संज्ञा दी गई थी इंद्रद्युम्न, यह ऐसे ही बिना मतलब के संज्ञा नहीं थी, वास्तव में बहुत तेजस्वी थे, इंद्र के समान प्रताप था उनका, तेज था। तो बहुत विख्यात राजा हुए इंद्रद्युम्न इति ख्यात तो विष्णु व्रत परायण। और सबसे बड़ी विशेषता बता रहे हैं कि भगवान के भक्ति में लगे हुए थे, राजा होते हुए भी भगवान की भक्ति के परायण थे, भोगों में नहीं। राजा को तो भोगों की खूब सुविधा रहती है, भजन की कम संभावना रहती है, लेकिन ये राजा होते हुए भी केवल भगवान के भजन में लगे रहते। विष्णु व्रत परायण, परायण का अर्थ है इंक्लाइंट, जो भगवान के भजन पर ही पड़े हुए थे भगवान। और व्रत परायण, व्रत का अर्थ भजन, जैसे श्रवण कीर्तन, भगवान की आरती करना और भी भगवान की नाना प्रकार की सेवा करना। भगवान विष्णु को ही अपने जीवन का सब कुछ समझते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे, अर्चना में लगे रहते थे, उसको कहते हैं विष्णु व्रत परायण। तो राजा होते हुए भी उन्होंने एक बार राज्य का भार अपने मंत्रियों को दे दिया और वे चले गए कुलाचल। कुलाचल महेंद्र पर्वत, इसको कहते हैं मलय पर्वत को, इसमें टीका में बात कही गई है कुलाचल। तो मलय पर्वत पर चले गए। स एकदा राधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिं जटाधरस तापसया प्लुतोचितम समर्चयामास कुलाचलाश्रम। एक बार वे कुलाचलाश्रम कुलाचल में मलय पर्वत में अपना आश्रम बनाए, कुटिया छोटी सी, और वहां जाकर के भगवान की आराधना कर रहे थे। एक दाकार से समय, एक समय भगवान के आराधना काल में वे कर रहे थे। उन्होंने व्रत लिया था भगवान की ऐसे पूजा करूंगा, ऐसे आराधना करूंगा, और वे आत्मवान थे, मन को पूर्ण वश में रखे थे। आत्मवान, आत्मा का अर्थ है मन और वान का अर्थ है वाला, मन वाला। और जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको बेमन वाला कहते हैं, बैठा है कहीं मन चला गया है, कहीं मन उसके पास नहीं होता, लेकिन जिसका मन उसके कंट्रोल में होता है उसको आत्मवान कहते हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न आत्मवान थे, मन पूरा वश में था, भगवान में लगा हुआ था। गृहीत मौन व्रत, और मौन व्रत धारण किए थे। मौन व्रत का अर्थ है कि भगवान के गुण, भगवान के नाम के अलावा और कोई बात नहीं बोलूंगा। राजनीति में रहते समय बहुत बात बोलनी पड़ती है, ऐसे प्रजा का पालन होगा, इस राजा पर चढ़ाई करना है, ये करना है, कर वसूल करना है, लेकिन मौन व्रत धारण किए, भगवान के कीर्ति और नाम के अलावा कुछ नहीं बोलना। गृहीत मौन व्रत, और ईश्वरम हरिम, ईश्वर की सर्वकर्षक भगवान की आराधना कर रहे थे। इतना दक्षित थे कि वे राजा की जटाएं बन गई थी, जटा बन गई। जब आदमी केयर नहीं करेगा अपने शरीर को और तीन तीन बार चार चार बार स्नान करेगा तो जटा तो बन ही जाएगी। तो जटा धर, जटाएं बन गई, बताए साधारण साधारण आदमी अपना कितना श्रृंगार करता है। और राजा जब भगवान के भजन में लगे तो भूल गए देह को, जटाएं बन गई, जटा धर। तापस, तपस्या कर रहे थे, आपलू तो और जब देखिए तब लगता था कि देह भींगा हुआ है, मतलब बारंबार स्नान करते थे, इसका अर्थ त्रिकाल स्नान, बहुत स्नान करते थे। भगवान का भजन करने वाले को स्नान से नहीं डरना चाहिए, आप्लुता मतलब भींगे ही रहते थे, भगवान के स्नान करते थे, अच्युतम समर्चयामास, और भगवान की अर्चना कर रहे थे, पूजा करते थे। अब देखिए इस तरह से लगे थे अखंड भगवान के भजन में, परंतु एक कमी थी महाराज इंद्रदुम्न में। कमी यह थी कि भगवान की भक्ति में तो लगे थे, लेकिन साधु महात्मा का उतना आदर नहीं करते। और कुछ यह भी भावना थी कि मैं भक्त हूं, मैं तो सब कुछ छोड़ करके भजन कर रहा हूं, तो यहां हम साधु सेवा करना और साधु की अवभगत करना अब हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मन में अहंकार था। लेकिन अहंकार होता है कुछ भी हो, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसका कल्याण ही होता है। देखिए उसमें आए जब मलय पर्वत पर थे, तो मलय पर्वत पर भगवान अगस्त रहते हैं, अगस्त मुनि रहते हैं, उनका प्रसिद्ध निवास स्थान है। जद्री छया तत्र महाजसा मुनि समागम शिष्य गणय परिश्रितः। अगस्त जी ने सुना कि महाराज इंद्रदुम्न भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं इसी पर्वत पर कहीं, तो एक बार अपने शिष्यों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। शिष्य ही परिश्रित, परितश्रित, चारों शिष्य थे, हजारों हजार शिष्य, 10,000 शिष्य लेकर के चलते थे दुर्वासा जी। पहले के लोग कहीं किसी महात्मा का सत्संग करने जाते थे तो शिष्यों के साथ जाते थे, ऐसे लिखा है भागवत में, भगवान रेणुका सुतः परशुराम जी शिष्यों के साथ गंगा जी के तट पर गए थे सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने के लिए। और कई ऋषियों का वर्णन है, शिष्या शिष्यों के साथ, कुछ सपुत्र पुत्रों के साथ जा रहे, पुत्र भी शिष्य ही माना गया है, तो इस तरह से जाते। यह बात है कि वे लोग हल्ला करने वाले बच्चों के और स्त्रियों के साथ नहीं जाते। कभी यहां तो शांति है कथा में, लेकिन हम देखे हैं भारत में कभी कभी यज्ञ में स्त्रियां जुटती हैं तो उनको वही टाइम मिलता है प्रवचन के समय बात करने का, क्योंकि आपस में कभी मेल होता नहीं, उसी समय फ्री टाइम मिलता है, तो कोई केयर नहीं होता है कि कोई बोल रहा है, आपस में बातचीत होती रहती है। तो शिष्यों के साथ पुत्रों के साथ जाते हैं। तो अगस्त जी वास्तव में आए यह जानकर के भगवान की भक्ति में रचे पचे हैं, हमारे देश के राजा हैं, बहुत श्रद्धा उनके उत्पन्न है, चले मिले कैसे करते हैं। जद्रिच्छया पहले से उन्होंने सूचना नहीं दिया, अर्थात जद्रिच्छया का अर्थ है कि घूमते घामते चले गए, या जद्रिच्छया का अर्थ है कुछ लेने के लिए, नहीं ऐसे ही चले महात्मा का संग करेंगे सब। अब इतने तपस्वी दीर्घजीवी अगस्त जी कितने नम्र है कि महाराज इंद्रदुम्न का दर्शन करने जा रहे हैं, ये ब्रह्मर्षि और एक क्षत्रिय का दर्शन करने जा रहे हैं, यह जानकर के भगवान के भक्त तो महाजसा मुनि, महाजसस्वी मुनि गए। महाजसा का यह अर्थ है महान भगवत भक्त। अजामिल प्रसंग को जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो अंत में वे कहते हैं कि यह हमने अगस्त जी के मुख से सुना है, और अगस्त जी अपने डीटी को अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे तो चरण छू छू कर कहते थे कि यह सत्य इतिहास है, मैं भगवान का चरण छू रहा है, ऐसा कहे हैं, भगवान का चरण छू करके कहे थे अगस्त सुखदेव गोस्वामी से और ऋषियों से। तो वे भगवान के कथा के परम धनी है, उनके पास शिव जी भी जाते हैं। एक बार त्रेता जुगमा ही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो अगस्त जी जगदीश्वर जानकर भगवान शिव को पूजे, कथा सुनने के लिए भगवान शिव गए थे। कैलाश से कहाँ कहाँ गए थे कथा सुनने। ये बहुत पहले से परंपरा है, घर द्वार छोड़ करके कथा सुननी चाहिए। अपनी पत्नी के साथ गए थे शिव जी। तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी महाजशस्वी हैं, यहाँ जस शब्द का अर्थ भक्ति, महान भगवत भक्त, परम भागवत। तो गए शिष्यों के साथ गए। तम वीक्ष्य, तो महाराज इंद्रदुम्न ने देखा इतने जशस्वी ऋषि आए हैं, तो उनके आने पर तुष्णिम अकृत अर्हणादिकम, वे बिल्कुल चुप ही रह गए। उनके पास समय था कि वे कह सकते थे, प्रणाम करते मुनि को और कहते कि आए बैठिए, मेरा हो भाग्य है कि आप हमारे आश्रम पर आए, लेकिन चुप कुछ नहीं। तुष्णिम ऋषि ने देखा कि बिल्कुल चुपचाप है और अकृत अर्हणादिकम, अकृत कुछ भी नहीं कहे, अरहण आदि कम जल का भी नहीं पूछे, जल पीने के लिए बैठने को नहीं कहे, रहस्य एकांत में थे। उपासीनम ऋषिश्चुकोप, और अगस्त ने देखा कि एकांत में बैठा है और कोई ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत काम धंधा में पड़ा हुआ है, एकांत में है, समय है, और फिर भी न तो उठ रहा है, बैठे रह गए तो उठ नहीं रहा है। अरे उठे नहीं होते, बैठे बैठे भी हरे कृष्ण कह दिए होते तब भी एक शिष्टाचार पूरा हुआ हो, तो कुछ नहीं। मन में ये भावना आ गई कि ऐसे साधु महात्मा तो आते ही जाते रहेंगे, अब हम क्या उठे, नियम कैसे छोड़े। यह ज्ञान आ गया, ये अहंकार इसको कहते हैं। चुपचाप रह गए, कोई पूजा नहीं किए, सत्कार नहीं किए, वचन से भी। तो ऋषि चुको पहा, ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? विधि का अतिक्रमण करने के कारण क्रोध आया, अपने अपमान के कारण नहीं। इसी पर श्रीधर स्वामी जी ने इसको लिखा है चुको पहा। चुकोप का अर्थ कोप किए। तस्मा इमं शापम अदात असाधु रयम दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमंता विस्तम तमोधम जथा गज स्तभुमति सर। तो अपने शिष्यों के सामने हो उनको साप दिए, तस्मई इमं शापम अदात, यह साप दिए, अयम दुरात्मा, यह दुरात्मा है, इसका हृदय शुद्ध नहीं है, अकृत बुद्धि, ये इसकी बुद्धि शिक्षिता नहीं, इसके बुद्धि को कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है किस देश में क्या काम करना चाहिए। यह अभिमानी है, यह दुरात्मा से तात्पर्य अभिमानी और अशिक्षित बुद्धि, विप्रावमानता, यह ब्राह्मण का अपमान कर रहा है। तो विषतम तमोधन जथा गज स्तभमति सेवा, यह घोर तम में प्रवेश करे, अज्ञान में चला जाए, जैसे हाथी बैठा रह जाता है और हाथी स्तब्ध मति होता है, वैसे हो गया। इसलिए स एव भवति, यह हाथी ही हो जाए, गज ही हो जाए, बिल्कुल गज जैसा बैठा है, लगता है कि इसको उठने में मेहनत पड़ रही, गज जैसा स्तब्ध मति है, उदंड मति है, इसलिए ये गज हो जाए। अब तो अगस्त जी साफ देकर के चले गए, तो प्रश्न होता है कि महाराज इंद्रदुम्न फिर चरण में गिरे कि नहीं, उनसे क्षमा याचना आदि किए कि नहीं। नहीं, वो साफ देकर के चले गए, बैठे रह गए, लेकिन जब साफ दे करके जा रहे हैं अगस्त जी, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं सप्तवा गतो अगस्त्यो भगवान नृपसानुग। हे महाराज परीक्षित, भगवान अगस्त्य सानुग एवं सत्वा जैसे, भगवान अगस्त साफ देकर चले गए। तो भगवान शब्द पर सारे आचार्य टीका करते हैं, भगवान का अर्थ है जितेंद्रिय, वास्तव में क्रोध नहीं हुआ, महाराज इंद्रदुम्न का हित करने के लिए उन्होंने साथ दिए, इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी भगवान कह रहे हैं, नहीं तो कहते कि खल आया सांप देकर के चला गया, ऐसे कहते ना। लेकिन ब्रह्मर्षियों की सभा में अगस्त जी के प्रति ऐसे सुंदर शब्द का प्रयोग करना इस बात का द्योतक है कि अगस्त जी को वास्तव में क्रोध नहीं हुआ, वे इंद्रदुम्न महाराज की भक्ति से बहुत प्रसन्न। महाराज इंद्रदुम्न इतनी भक्ति में है कि तत्परता तन्मयता के कारण वे नहीं कुछ कर पाए, भले विधि व्यवहार नहीं जाने, एटिकेट नहीं जानते थे, लेकिन भगवान के भक्त तो थे, वे प्रसन्न हुए। तो उन्होंने देख लिया कि अगर इस तरह से मनुष्य शरीर में रहेगा तो इसको भगवत प्राप्ति में बहुत विलंब हो जाएगा, क्योंकि जाने अनजाने अपराध हो रहा है। इसलिए उन्होंने मनुष्य शरीर छोड़ा दिया और हाथी का शरीर दिया, इसमें तो कोई अपराध करेगा नहीं और एक जन्म में भगवान को पा जाएगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी अगस्त जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे। कभी कभी नहीं समझने के कारण कुछ लोग इतना ही लेते हैं कि साथ दे दिया, क्रोध कर लिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो उनको भगवान कह रहे हैं, तो हमें भी तो ऐसा ही कहना चाहिए ना। हमें भी वास्तव में भागवत कहना जानते हैं, पढ़ते हैं और वास्तव में सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चल रहे हैं, तो जैसे वो जिसके विषय में जो शब्द बोल रहे हैं वही शब्द बोलना चाहिए। कृपा किया वास्तव में उन्होंने, इस तरह से साप क्या दिया उन्होंने, कृपा किया और वे चले गए। नृप शब्द संबोधन करें कि महाराज आपको भी ब्राह्मण का साप मिला हुआ है। साप ब्राह्मण लोग देते ही रहते हैं और वो भी राजा थे, उनको साप मिला। खैर बेचारे वे तो सांप लपेटने नहीं गए थे, वो तो केवल चुपचाप बैठे रह गए, आपने तो सांप लपेट दिया ऋषि के गले में। लेकिन वो जो साप दिया मरने का आपको, तो वास्तव में क्रोध में साप दिया था, लेकिन अगस्त भगवान जो साप दिए वो अनुग्रह करने के। आपको जो श्रृंगी ने साप दिया इसमें और इस साप में बहुत अंतर, कृपा किया, वही अगस्त जी की कृपा तो भगवत प्राप्ति में कारण हो गई। इस तरह से बता रहे हैं आप तो राजर्षि दिष्टम तदुपधारे। महाराज इंद्रदुम्न पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, महाराज इंद्रदुम्न यही माने कि भगवान की यही इच्छा थी कि इतना दिन में मनुष्य शरीर में था, अब हाथी शरीर में हो जाऊं, यही ईश्वर की इच्छा, यह मेरे कर्म का फल है और भगवान की इच्छा है, इसलिए वे स्वीकार कर लिए, नहीं तो वे भी चाहते तो साप दे सकते थे अगस्त जी को, हो सकते थे ऐसे ही आए, मैं भगवान के भजन में था, मुझको साथी बना दिया तो तुम भी कुछ हो जाओ। एक बार ऐसे साफ हुआ था, नवम स्कंध में कथा है, जनक महाराज सीता जी के पिताजी एक यज्ञ करना चाहते थे, तो उनके पुरोहित वशिष्ठ जी को उन्होंने कहा कि हमारा यज्ञ करा दीजिए, तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा, लेकिन मुझे इंद्र का निमंत्रण है, पहले उनका यज्ञ मैं करा लूंगा तब तुम्हारा कराऊंगा। जो कहकर चले गए, इंद्र का यज्ञ कराने लगे। जब इसके गुरु हैं तो पहली प्राथमिकता इसको देनी चाहिए ना, इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन इंद्र बहुत धनी है तो ज्यादा दक्षिणा देंगे, तो इसलिए वो वहां चले गए और सोचे जजमान तो अपना है ही, बाद में इसको करा ले। तो उधर वशिष्ठ जी चले गए, तो जनक महाराज ने सोचा कि जीवन का क्या ठिकाना, गुरु महाराज कब से आएंगे, वो यज्ञ चालू करा दिए दूसरे ऋतविजों से, यज्ञ चालू करा दिए। जब वशिष्ठ जी आए तो देखते हैं कि जजमान इस तरह से यज्ञ चालू करा दिए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्रोध इतना है कि उन्होंने कह दिया तुम देह बिना देह के हो जाओ, मर जाओ, नहीं तुम मर जाओ, मृता मर जाओ, गुरु की अवहेलना कर रहे हो। तो निमि महाराज भी साथ दिए, तुम भी मर जाओ, लोभ से तुम धर्म को नहीं जानते हो, लोभे न धर्मम अजान, तुम भी मर जाओ। तो उधर गुरु जी मरकर गिर गए, इधर शिष्य मरकर, ये भागवत में कथा है। तो कहने का आशय सुखदेव गोस्वामी का यह है कि महाराज इंद्रदुम्न चाहते तो प्रतिसाद दे सकते, लेकिन उन्होंने उसे भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार किया कि अगस्त जी के मुख से भगवान हमारे जीवन में व्यवस्था दे रहे हैं, इसलिए अगस्त जी पर भी क्रोध नहीं हुआ और अपने लिए कोई घबराहट नहीं हुई कि हाथी हो जाऊंगा। भगवान की जो इच्छा है, हमारे प्रभु की जो कुछ करना चाहे कोई रहे, यही है वास्तव में सज्जन का प्रतिशोध लेना या प्रतिशाप देना, यह उचित नहीं होता। कुछ लोगों को तो कोई दुर्वचन दूसरा आदमी बोल दे तो जब तक ये शब्द वेधी बाण नहीं मारेंगे तब तक चैन ही नहीं आता, सोचते हैं कि मैं जबान बंद कर दिया उसका, तो वो दो गाली दिया तो मैं चार गाली दिया, तो इसको विजय माना जाता है संसार में, विजय माना जाता है। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज की महिमा देखी, अगस्त जी जैसे ऋषि का साप हुआ, प्रकट रूप से कितना भयावह साप है कि एक राजर्षि और एक पशु हो जाए, बहुत बड़ा घातक साप था ना। लेकिन ये मानते थे तत्ते अनुकंपान सुसमिक्ष मान भुंजन एवं आत्मकृतम विपाक, भगवान की कृपा इस रूप में हुई है, यही वो मानते रहे। आपन्न कौंजरिम जोनिम आत्मस्मृति विनाशनिम, आत्मा का स्मरण विनष्ट कर देने वाली कौंजरी जोनिम, कुंजर की हाथी की जोनी इनको मिली। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि लेकिन इस प्रकार से भगवान का स्मरण कैसे हो गया हाथी के शरीर में, तब कहते हैं हर यर्चना अनुभावे न जग गजते प्यनुस्मृति, भगवान की बहुत पूजा किया था, भजन किया था राजर्षि इंद्रदुम्न ने, इसलिए गजत्रे अति हरि हरे अनुस्मृति, गज शरीर में भी भगवान का स्मरण हो गया। ये अविनाशी भक्ति, नेहा भी क्रमना स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्य से धर्म से त्राय के महत्व, भक्ति कभी विफल नहीं जा सकती है। गज शरीर में वास्तव में इंद्रदुम्न महाराज ने कोई भजन नहीं किया, लेकिन इंद्रदुम्न शरीर में कितना किया था तो सामने प्रकट। तो पहले हरि अर्चना अनुभाव है ना, भगवान को उन्होंने पूजा किया था, खूब मन लगा करके भजन किया था, जप किया था, तो इस तरह से यही कारण था कि गज शरीर मिलने पर भी भजन का प्रभाव नहीं गया, भगवान का स्मरण हुआ। किसी व्यक्ति के जीवन में भले और सारी सफलताएं हों, लेकिन भगवान का स्मरण न हो, कृष्ण का भजन न हो, तो सब व्यर्थ माना जाता है। गज शरीर में भी भगवान का स्मरण हुआ है बहुत बड़ी बात, नहीं तो मनुष्य के शरीर में तो आदमी भजन ही नहीं कर रहा है, हाथी क्या भजन करे, गज गज शरीर में भी स्मरण हो गया। अब कथा का उपसंहार करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विमोक्ष गज जुत्थपम अब्जनाभ तेना पिपार्षद गतिं गमिते न युक्तः गंधर्व सिद्ध विबुधय रूप गीयमान कर्माद्भुतम सुभवनम गरुणासनो गात। इस प्रकार गजजुत्थपम गजेंद्र को विमोक्ष विमुक्त करके पार्षद बना करके, पार्षद गतिम गमित है ना, जब गजेंद्र पार्षद बन गए तो अपने पार्षद से युक्त होकर अर्थात गरुण जी पर बैठाकर भगवान उनको ले गए वैकुंठ। ऐसी गति बहुत लोगों की नहीं होती है, ध्रुव महाराज को भगवान के पार्षद लेने आए थे, और किसी को भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, लेकिन गजेंद्र को साक्षात भगवान अपने गरुण जी पर बैठा करके ले गए। भगवान गरुण जी पर बैठे हैं और बगल में ही वो बैठे थे, पर खड़ा रह करके सेवा कर रहे होंगे भगवान की। तो गजेंद्र हम लोग कहेंगे पूर्व का हाथी का शरीर है, लेकिन अब उनका क्या नाम हुआ होगा, तो भगवत पार्षद उनका नित्य नाम होगा कुछ न कुछ, लेकिन हम लोग तो कथा में ही कहते हैं गजेंद्र चले गए भगवान के धाम, गजेंद्र चले गए। तो भगवान के साथ गए। तेने गमिते ने जो पार्षद गतिम गमिते ने जुक्त अब जनाब। और जब भगवान जाने लगे तो उस समय गंधर्व सिद्ध देवता आदि सब भगवान की कीर्ति को गाते हुए चले। जैसे सामान्य व्यक्ति को भी आदमी कुछ दूर छोड़ता है, इसको प्रस्थापन कहते हैं, और जब आता है तो उसकी अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं। तो भगवान के साथ जितना दूर जा सकते थे देवता आदि सब गए गाते हुए। गरुणासन होगा, भगवान गरुणासन बन कर आए, गरुण जी पर चढ़कर। तीनों युक्त है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गजेंद्र के साथ गरुणासन चले गए अपने धाम में। कैसा धाम है भगवान का? अद्भुतम कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अद्भुतम। उनके कर्म का बखान देवता लोग कर रहे थे, भगवान अद्भुतम स्वभवन, भगवान का भवन अद्भुत। अद्भुत का अर्थ है कि लोक में किसी भी भवन से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। पृथ्वी के भवन की तो बात नहीं की जा रही है, वो स्वर्ग से तुलना करके कहे जा रहा अद्भुत। भवन का अर्थ है धाम, स्थान। चले गए। अब इस प्रसंग के श्रवण कीर्तन का क्या फल होता है, श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। एतन महाराज मया तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्ग्यम जसस्यम कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशम कुरु वर्जसिनवताम्। हे महाराज, यह गजराज मोक्षणम कृष्णानुभाव, गजराज को मुक्त करने की जो कृष्ण के अनुभव का मैंने वर्णन किया, यह स्वर्ग देने वाला है, वैकुंठ देने वाला है। यशस्यम, जस वर्धक है, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। दुःस्वप्न का नाशक, श्रीणवता केवल सुनने मात्र से। इस प्रकार से इस प्रसंग का फल है, ये कृष्णानुभाव है। अनुभव का अर्थ होता है भक्तों के प्रति भगवान की भावना, कितना प्यार किए भगवान गजेंद्र जी से, दौड़ करके आए और मुक्त किए और अपने साथ ले गए वैकुंठ। यह अनुभव कृष्ण का। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनुभव दिए गए। जब किसी भाव को प्रकाशित करता है कोई कर्म तो उसको अनुभव कहा जाता है। भक्तों के प्रति भगवान का भाव है, तो भाव प्रकाशित हुआ गजेंद्र के उद्धार द्वारा। तो यह कृष्णस्य अनुभाव, कृष्ण का अनुभाव, भक्तों से इतना प्रेम। भाव किसी का कितना भी हृदय में हो, लेकिन जब तक क्रिया में नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त से प्रेम करते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? गजेंद्र के उद्धार में पता चल गया है। ओहो, कितना स्नेह है भगवान का, दौड़ करके भगवान उद्धार किए। तो इस प्रसंग में भगवान का अनुभव प्रकट हुआ है। उन्होंने आपसे कहा ये स्वर्ग्यम, स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ। सुनने वालों को यह वैकुंठ देता है। और फिर साधारण स्वर्ग आदि की तो बात ही कर, जसस्यम, मनुष्य बड़ा से बड़ा काम करने में समर्थ हो जाता है इस प्रसंग को सुनने पर, उसे कर्म में सफलता मिलती है तो उसका यश बढ़ता है। और कलयुग के सब प्रकार के पापों का नाशक है। और दुःस्वप्न नाशक, दुःस्वप्न का अर्थ है कभी कभी ऐसा सपना आता है कि फल आने वाला होता है, कोई घटना घटने वाली होती, कर्म का फल चालू हो जाता है और व्यक्ति को भोगना पड़ता है, तो कभी कभी सपने में उसकी सूचना दे दी जाती है। सभी स्वप्न सच्चे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे स्वप्न होते हैं कि भविष्य में बहुत बड़े अनिष्ट की सूचना दे देते हैं कि आने वाला, लेकिन उस समय उसको किसी भी उपाय से रोका नहीं जा सकता है, उस प्रारब्ध को, कर्म फल को। लेकिन यदि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी जाए तो कितना भी घातक कर्म फल चल करके भी नलिफाई हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो नहीं भोगना पड़ेगा, जिसको दुःस्वप्न नाश कहते हैं। जो कर्म फलाभिमुख है, फल देने वाला है, वो भी टल जाएगा, और फिर जो संचित है वो नष्ट हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। इस प्रसंग के सुनने का फल और जथानुकीर तेन ते तो श्रेयस कामा द्विजात सुशेह प्रातरुख है दुस्वप्ना दीक्षांत। भगवान कहते हैं कि द्विजाति गण सवेरे भोर में स्नान करके पवित्र हो करके दुस्वप्न आदि उपद्रवों की शांति के लिए इसका जथावत कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। दुस्वप्न शब्द से तत्पर्य है कठिन कर्म बंधन। कर्मों के अनुसार दुख होता है व्यक्ति को, संकट आते हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रसंग है कि इसको सुनने पर, पाठ करने पर सब प्रकार के संकट से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इस पर मानो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि इसमें प्रमाण कैसे हम जाने कि इस कथा का इतना प्रभाव है। तब कहते हैं इदम आ हरि प्रीतो, ये भगवान ने ही अपने मुख से ऐसा कहा त्रिकूट पर्वत पर, भगवान प्रमाण है सबसे, उन्होंने ही इस बात को कहा था। इदम आ हरि प्रीतो गजेन्द्रम कुरुसत्तम श्रृणवताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयोभिभुः। भगवान ने ही ये बात स्वयं अपने मुख से कही थी। गजेंद्र का जब उद्धार कर दिए तो गजेंद्र को सुना करके, चतुर्भुज रूप में गजेंद्र थे उसने सुना करके, और श्रृणवताम सर्वभूतानाम वहां पर उपस्थित सारे देवता सुन रहे थे, सबको सुना करके भगवान ने यह बात कहा था। भगवान सर्वभूतमय है, सबके हृदय में बसते हैं, और सर्वभूतमय कह रही है, फिर वहां जितने ब्रह्मा आदि थे वे सब कृष्ण पर, भगवान पर ही चित्त लगाए थे। तो भगवान सबके सुनते सुनते ये बात कहे थे अपने मुख से इसकी महिमा। देखिए क्या भगवान ने कहा था, श्री भगवान वाच, भगवान की बात को अविकल रूप से सुखदेव गोस्वामी रिले कर रहे हैं। भगवान ने ये कहा था, भगवान क्या कहे थे सुनिए ध्यान से। ये माम त्वाम च सरस्येदम गिरी कंदर काननम बेत्र कीचक बेणु नाम गुलमानी सुर पादपान। गजेंद्र से भगवान कहते हैं कि जो लोग माम मेरा, त्वाम तुम्हारा, जो मुझको तुमको सरस चैदम और इस सरोवर का और इस गिरी कंदर का नाम पर्वत का, कंदरा का, वन का, देत कीचक वेणु नाम गुलमानेश्वर पादपान, ये जितने भी देत हैं, कीचक हैं, बांस हैं, लताएं हैं, कल्प वृक्ष हैं, इन सबका जो स्मरण करता है वो सब पापों से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए विस्तार से वर्णन किया गया था वृक्षों का, वन का स्मरण करने के। बताइए पर्वत का, वन का, बांस का स्मरण करने से व्यक्ति सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह भगवान के लीला का साइट बना, धाम बना, एक प्रकार से भगवान वहां उपस्थित हुए और जिस वन में गजेंद्र रहते थे उस वन की महिमा भगवान गा रहे हैं। जो मेरा स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, तुम्हारा स्मरण करते हैं सरोवर का, गिरी कंदर का नाम, वेत कीचक वेणु नाम, गुलमा निश्व पादपान, श्रृंगार इमान भीष्मानी, इन तीनों सिंहों का, शिखरों का जो स्मरण कर, इमानी, इमानी का अर्थ है ये, भगवान अपने अंगुली से दिखाकर गजेंद्र को कह रहे हैं ये पर्वत के शिखर जहां तुम रहे हो, इनका जो स्मरण करता है सब पाप से मुक्त हो जाता है। ये तीनों शिखर सामान्य नहीं है गजेंद्र, एक पर मैं रहता हूँ, एक पर शिव जी रहते हैं और एक पर ब्रह्मा रहते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। ये तीनों हमारे धाम हैं, मैं और ब्रह्मणा शिवस्य च। कितना भगवान महान रूप से बोल रहे हैं, जैसे भगवान शिव को और ब्रह्मा जी को अपने समान कह रहे हैं कि तीन पर्वत के शिखर हम तीनों के धाम हैं। भगवान कभी कभी आते थे सैर करने, शिरोदम में प्रियम धाम श्वेत दीपम से भास्वरम। आगे से इस कानो है कि इन सब का जो स्मरण करते हैं इसमें से एक का भी वो सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। सब नाम द्वितीय में ले रहे हैं, शिरोदम क्षीर समुद्र जो मेरा प्रिय धाम है, और क्षीर समुद्र के भीतर जो मेरा श्वेत दीप है, भास्वर चमकने वाला, इसका जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम गदम कौमोदकी मम सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम प्रतिगेश्वरम। भगवान के स्मरण के साथ साथ और क्या क्या स्मरण करना चाहिए। श्रीवत्स भगवान के बाएं वक्षस्थल पर श्री रेखा और कौस्तुभम कौस्तुभ मणि माला घुटने तक पैर तक लटकी हुई फूल की माला गदा जिसका नाम है कौमोद की और सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख और गरुण जी। भगवान इस तरह से करेंगे इनका जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं अपने स्मरण के समान बता रहे हैं। शेषम च मत्कलाम सूक्ष्माम श्रीयम देवी मदाश्रयाम ब्रह्माणम नारदम ऋषिम भवम प्रहलादम एवच। जो मेरी ही कला शेष नाग का स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। मेरी शरण में रहने वाली मेरी आश्रिता श्री का जो स्मरण करते हैं लक्ष्मी जी का सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। नारद जी का प्रहलाद महाराज का शिव जी का जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। देखिए कितना उदार भाषा में भगवान बोल रहे हैं। भगवान ही वास्तव में बोलना जानते हैं मानद हैं मान देते हैं भगवान सबको जो मेरा स्मरण करते हैं। वहां पर शिव जी ब्रह्मा जी बेचारे वो बड़े सिर झुकाए हुए सोच में पड़े थे कि हम लोग नहीं गजेंद्र को बचाए तो भगवान की दृष्टि में हम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन भगवान वहां कह रहे हैं जो मेरा शिव जी का इनका इनका स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। तब शिव जी को कुछ ठीक लगा होगा कि भगवान प्रसन्न। लेकिन कितना भगवान उदार भाव से बोल रहे हैं। उनको थोड़ा भी ये गुस्सा नहीं था कि ये लोग नहीं गजेंद्र को बचाए। भगवान चाहते भी नहीं थे। अगर बचा दिए होते तो भगवान आए नहीं होते और केवल हाथी का शरीर बच गया होता ना। पार्षद तो बने नहीं होते। इसलिए ब्रह्मा जी आदि सोच रहे थे हम लोगों ने अच्छा किया कि इसको नहीं बचाया। भगवान आए तो ऐसे मुक्त की। और मैंने बहुत अवतार लेकर के जो लीलाएं किया है जैसे मत्स्य कूर्म वराह आदि अवतार उन अवतारों में हमने जो कुछ किया है हमारे अनंत पुण्य पवित्र कर्मों को जो गाते हैं सुनते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। जो सूर्य का स्मरण करते हैं पवित्र हो जाते हैं। सोमम चंद्रमा का हुतासनम अग्नि का ये सब स्मरण के विषय हैं। अच्छा प्रणवम सत्यम अव्यक्तम जो प्रणव ओंकार का स्मरण करते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और सत्यम सत्य का प्रणवम सत्यम अव्यक्तम यहाँ सत्य से अर्थ है भागवत धर्म का। गोविप्रम जो गायों का ब्राह्मणों का और अव्यय धर्म सनातन धर्म का स्मरण करते हैं नियम पालन करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। दाक्षायणी धर्म पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। धर्म की पत्नियों का और सोम कश्यपेवरपि सोम की पत्नी कश्यप की पत्नी ये सब दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं उनका जो स्मरण करते हैं पाप से मुक्त हो जाते हैं। गंगाम सरस्वती नंदाम कालीम दिन शितवारणम ध्रुवम ब्रह्म ऋषि सप्त पुण्य श्लोकांश मानवान गंगा का सरस्वती का नंदा का कालिंदी और ऐरावत हाथी ध्रुव महाराज सप्तर्षि और समस्त मनु महाराज और उनके पुत्रगण उत्थाय अपर रात्रांते भोर में उठ करके जो कोई व्यक्ति मन को एकाग्र करके इन सब का स्मरण करता है जो मेरे ही रूप हैं तो वह सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो मेरा स्मरण करता है और इन सब का तो सब पाप से मुक्त हो जाता है। और हे प्रिय गजेंद्र के द्वारा की गई इस स्तुति से जो मेरा स्तवन करते हैं प्रार्थना करते हैं तो प्राणांत के समय शरीर छोड़ते समय उनको मैं विमला बुद्धि देता हूँ मैं देता हूँ। शरीर छोड़ते समय विमला बुद्धि अथवा विपुलाम गति मैं वैकुंठ देता हूँ। इस स्तुति के द्वारा जो मेरा स्तुति करते हैं तो मैं उनको वैकुंठ देता हूँ यह बहुत ही शुद्ध कृष्ण भावना में ज्ञान विमल बुद्धि देता हूँ। यह बात भगवान ने कहा कह करके इत्यादि से ऋषि के सब प्रथमा जल जोतम ऐसा कह कर भगवान ने शंख बजाया था। जैसे ट्रेन खुलती है तो सीटी देती है, वैसे भगवान जब गरुण जी को आप चलाना चाहते थे तो बहुत हर्षित किए देवताओं को, शंख बजा, इतना प्रवचन करके शंख बजाए, और इसके बाद गरुण जी तो समझते ही थे गरुण जी लेकर के भगवान को और गजेंद्र को चलेंगे। इस तरह गजेंद्र मुक्त हो गए। हर्षेन दुर्धानिकम आरुरोह खगाधिपम, भगवान देवताओं को हर्षित करते हुए शंख बजा करके तब गरुण जी पर चढ़े। गरुण जी पर भगवान चढ़ते हैं कैसे? गरुण जी ऐसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अपने पंखों को बिल्कुल जमीन पर सटा देते हैं, वो सीढ़ी जैसे बन जाते हैं, भगवान आराम से चढ़ लेते हैं। हाँ, भगवान को चलना नहीं पड़ता है, भगवान जब ही पंख पर चढ़ते हैं तो गरुण जी पंखों को ऐसे उठा कर लेते हैं और चले। इस तरह भगवान अपने प्रिय भक्त गजेंद्र को लेकर अपने धाम चले गए। राजन उदित में तत्ते हरे कर्माघनासनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम त्वंतरम सिरु। लास्ट में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, मैंने बहुत पवित्र गजेंद्र मोक्ष की कथा आपसे कहा, अब रैवत मनवंतर की कथा सुनिए। यहाँ से अब समुद्र मंथन की कथा आगे प्रारंभ हो जाती। यह बारंबार कहा गया है कि गजेंद्र मोक्ष बहुत पवित्र कथा है, हमारी अविद्या का हरण करता है, भगवान में प्रेम देता है। इस तरह यह प्रसंग यहाँ पर पूरा हुआ। यहाँ पर कुछ भक्तों ने पहले से ही हमसे कहा था कि गजेंद्र मोक्ष की कथा होनी चाहिए, गजेंद्र जी की कृपा से, उनके प्रभु की कृपा से ये कथा पूरी की गई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा का आयोजन किया। जरूरत है ऐसे कुछ घूम लेना सही है, लेकिन ऐसे प्रसंग पूरे होते हैं तो मन में आता है कि नहीं जरूर कहना चाहिए, ऐसे भक्तों के कृष्ण भक्ति का वर्धन होता है। आपको, आप सब भक्तों को जो भी कथा में आए भूरी भूरी धन्यवाद है, और गरुण वाहन भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब की मति उनके चरणों में लगी रहे। हरे कृष्ण।
न्यू नवदीप धाम मंदिर की ओर से महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के यहाँ गजेंद्र मोक्ष की हम सबको कथा कही।